आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। हुकूमत ने राजस्थान के कोटा बूंदी में 1,500 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत के ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे की तामीर को मंजूरी दे दी है। हुकूमत ने ओडिशा में 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत के 6 लेन वाले राजधानी खिता रिंग रोड प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में चीन के वजीर खारजा वैंग यी के साथ मीटिंग के दौरान भारत चीन सरहद पर अमन सुकून बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया। पार्लियामेंट ने कानों और मादनियात से मुतालिक तरक्याती और इंजबाती तरमीमी बिल को मंजूरी दे दी है। और क्रिकेट में मर्दों के आइंदा T20 एशिया कप और खवातीन के ODI आलमी कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। अब खबरें तफसील से। मरकजी काबीना ने राजस्थान के कोटा बूंदी में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे की तामीर को मंजूरी दे दी है, जिसकी तखमीना लागत 1,507 करोड़ रुपए है। इस प्रोजेक्ट में 20,000 मुरब्बा मीटर रकबे पर टर्मिनल इमारत की तामीर भी शामिल है, जो इंतहाई मसरूफ औकात में 1,000 मुसाफिरों के लिए कारामद साबित होगी।
ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट नया एयरपोर्ट बनेगा कोटा बूंदी एयरपोर्ट। करीब 20,000 स्क्वायर मीटर की टर्मिनल बिल्डिंग बनेगी, 3,200 मीटर का रनवे बनेगा, 1,000 एकड़ जमीन राजस्थान सरकार इसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है और करीब 1,507 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इसमें आएगा। कैपेसिटी इसकी होगी 2 मिलियन पैसेंजर्स पर एनम।
कोटा भारत के मारूफ तालीमी कोचिंग हब के तौर पर मशहूर है। कोटा की तालीमी और सनअती शोबे में मौजूदगी से ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे को बुनियादी ढांचे के अहम प्रोजेक्ट के तौर पर अहमियत हासिल हो गई है, जिससे इस खित्ते की ट्रैफिक आमोदरफ्त के मसले से निपटा जा सकेगा। नई दिल्ली में आज दोपहर मीडिया को इस बारे में तफसीलात बताते हुए इत्तेलात और नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि काबीना ने 8,307 करोड़ 74 लाख रुपए की लागत से ओडिशा में 6 लेन वाले कैपिटल रीजन रिंग रोड की तामीर को भी मंजूरी दी है। भुवनेश्वर बाईपास से ओडिशा और दीगर शुमाली रियासतों को खातिर खा फायदा पहुंचेगा। इसकी बदौलत भारी कमर्शियल ट्रैफिक को कटक, भुवनेश्वर और खोरडा शहरों से दूर रखा जा सकेगा।
6 लेन एक्सेस कंट्रोल रिंग रोड कटक और भुवनेश्वर के लिए, कोलकाता से चेन्नई का जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का जो NH-16 का हिस्सा कटक और भुवनेश्वर के बीच में से निकलता है, ऑब्वियसली वहाँ पे काफी कंजेशन है, तो लंबे टाइम से एक डिमांड थी कि इसकी एक रिंग रोड बने जिससे कि ट्रैफिक का फ्लो एक अलग तरीके से ठीक से हो। तो ये प्लानिंग की गई है कटक से थोड़ा सा ऊपर टांगी से लेके भुवनेश्वर और खुर्दा को बाईपास करने के बाद में रामेश्वर पे आके ये जुड़ेगा, तो एक तरीके से पूरा इसका ये रिंग रोड बना। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है।
इस बाईपास से खित्ते में माल बर्दारी की कारकर्दगी में इजाफा होगा, लॉजिस्टिक लागत में कमी आएगी और सामाजिक इकतसादी तरक्की मुमकिन हो सकेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज भारत चीन सरहद पर अमन सुकून बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया है और सरहदी मामले के मुनसिफाना, माकूल और बाहमी तौर पर काबिल कबूल हल के भारत के अज़्म को दोहराया है। जनाब मोदी ने आज शाम नई दिल्ली में चीन के वजीर खारजा वैंग यी का खैर मकदम किया। जनाब यी ने वजीर आजम को चीन के सदर शी जिनपिंग का पैगाम और SCO सरबरा कॉन्फ्रेंस का दावतनामा सौंपा, जो टियानजिन में होगी। जनाब मोदी ने SCO सरबरा कॉन्फ्रेंस के दावतनामे के लिए चीन के सदर का शुक्रिया अदा किया और उसे कबूल किया। उन्होंने SCO समिट में चीन की सदारत के लिए हिमायत का इजहार किया और कहा कि वो टियानजिन में चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात के मुंतजिर हैं। जनाब मोदी ने इस बात का जिक्र किया कि भारत और चीन के दरमियान मुस्तहकम और सूदमंद ताल्लुकात से खासतौर पर इलाकाई और आलमी अमन खुशहाली में तआवुन मिलेगा। इस दौरान ज़राए ने कहा है कि चीन ने भारत की 3 अहम तहफ़ुज़ात के इजाले का वादा किया है। इससे कबल दिन में भारत के कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल और चीन के वजीर खारजा वैंग यी ने नई दिल्ली में दोनों मुल्कों के दरमियान सरहदी मामले पर खसूसी नुमाइंदों के 24वें मुज़ाकरात किए। अपने इफ्तिताही कलमात में जनाब डोवाल ने कहा कि गुज़िश्ता 9 माह में सरहद पर सूरत-ए-हाल बेहतर हुई है और पुरअमन और पुरसुकून है।
There has been an upward trend. Borders have been quiet. There have been peace and tranquility. Our bilateral engagements have been more substantial. And we are most grateful to our leaders who in Kazan in October last were able to set a new trend. And we have profited a lot since then. The new environment that has been created has helped us.
اس دوران چین کے وزیر خارجہ وینگ یی نے اس بات پر زور دیا کہ گزشتہ برس میں دونوں ملکوں نے جس صورتحال کا سامنا کیا وہ دونوں ملکوں کے عوام کے مفاد میں نہیں تھی.
For this round of talks between the special representatives of China and India on the boundary question, the setbacks we experienced in the past few years were not in the interests of the people of our two countries. And then in October last year, President Xi Jinping and Prime Minister Modi had an important meeting in Kazan. That meeting pointed the direction for the development of our bilateral relations and provided impetus for the proper settlement of the boundary question.
وزیراعظم نریندر مودی نے مستقبل کے مشنوں کی قیادت کی خاطر بھارت میں خلابازوں کے ایک بڑے گروپ کو تیار کرنے کی ضرورت کو اجاگر کیا ہے. کل نئی دلی میں گروپ کیپٹن شبانشو شکلا کے ساتھ بات چیت کے دوران جناب مودی نے یہ بات کہی. انہوں نے کہا کہ اب بھارت کے آئندہ دو اہم مشن ہیں، بھارت خلائی اسٹیشن اور گگنیان. وزیراعظم نے زور دیا کہ آئندہ مشنوں میں گروپ کیپٹن کا تجربہ انتہائی اہمیت کا حامل ہوگا. وزیراعظم کا جواب دیتے ہوئے گروپ کیپٹن شکلا نے کہا کہ یہ حصولیابی ملک کی ایک اہم کامیابی ہے. وہ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن کے اپنے تاریخی مشن کے بعد ہفتے کے روز وطن واپس آئے ہیں. وزیراعظم نریندر مودی اس مہینے کی 22 تاریخ کو بہار کے گیا میں آنتا سیماریا پروجیکٹ کا افتتاح کریں گے. اس پروجیکٹ میں دریائے گنگا پر تقریباً 2 کلومیٹر طویل پل شامل ہے جو پٹنہ ضلع کے موکاما اور بیگو سرائے کے درمیان براہ راست کنیکٹیویٹی فراہم کرے گا. نئی دلی میں میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے قومی شاہراہوں کی بھارتی اتھارٹی کے رکن انل چودھری نے مطلع کیا کہ اس پل کو پرانے 2 لین والے ریل اور سڑک پل راجندر سیتو کے ساتھ ساتھ تعمیر کیا گیا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ اس نئے پل سے بہار کے شمالی اور جنوبی خطوں کے درمیان نقل و حمل کرنے والی بھاری گاڑیوں کے سفر کا اضافی فاصلہ 100 کلومیٹر تک کم ہو سکے گا. جناب چودھری نے کہا کہ اس پروجیکٹ سے سفر کو آسان بنانے کے ساتھ ساتھ بھاری گاڑیوں کے ایندھن کی بچت ہو پائے گی اور ان کی لاجسٹک لاگت میں کمی آئے گی. وزیراعظم نریندر مودی نے سال 2017 میں اس پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھا تھا جو بہار میں کنیکٹیویٹی اور علاقائی ترقی میں اضافے کے سلسلے میں ایک یکسر تبدیلی کا آغاز ہے. این ڈی اے کے نائب صدر کے امیدوار سی پی رادھا کرشنن کل اپنا پرچہ نامزدگی داخل کریں گے. ان کے پرچہ نامزدگی داخل کرنے کے عمل میں این ڈی اے کے سبھی رہنما شرکت کریں گے. وزیراعظم نریندر مودی نے آج اپوزیشن پارٹیوں سمیت سبھی سیاسی جماعتوں سے این ڈی اے کے نائب صدر کے امیدوار سی پی رادھا کرشنن کو متفقہ طور پر منتخب کرنے کی اپیل کی. نئی دلی میں این ڈی اے کی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ کے دوران جناب مودی نے یہ کہتے ہوئے جناب رادھا کرشنن کو این ڈی اے کے اراکین نے پارلیمنٹ سے متعارف کرایا کہ رکن پارلیمنٹ اور گورنر کی حیثیت سے انہوں نے مختلف فرائض انجام دیے. میٹنگ کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے پارلیمانی امور کے وزیر کیرن ریجیجو نے کہا کہ وزیراعظم نے سبھی سیاسی پارٹیوں اور ان کے اراکین پارلیمنٹ سے نائب صدر کے انتخاب کے لیے اتفاق رائے سے جناب رادھا کرشنن کی حمایت کرنے کی اپیل کی ہے.
ہم چاہتے ہیں کہ ایک ساتھ مل کر کے اپ راشٹرپتی جی کا چناؤ میں سور سمتی سے رادھا کرشنن جی کا سپورٹ کریں تو ہمارا لوک تنتر کے لیے بھی، ہمارا دیش کے لیے بھی اور راجیہ سبھا کو سنچالن کرنے میں بھی بہت اپیوگی ہوگی. تو پارلیمنٹری پارٹی کے بیٹھک میں سب پارٹی نے آدرنیہ پردھان منتری جی کو بھی دھنیہواد دیا کہ بہت ہی اچھا انسان کو اپ راشٹرپتی جی کا چناؤ کے لیے امیدوار کے روپ میں اتارا گیا ہے.
اس دوران اپوزیشن آئی این ڈی آئی اے بلاک نے نائب صدر کے انتخاب کے لیے سپریم کورٹ کے سابق جج بی سدرشن ریڈی کو اپنا امیدوار بنایا ہے. کانگریس صدر ملک ارجن کھڑگے نے کہا کہ سبھی اپوزیشن پارٹیوں نے جناب ریڈی کو مشترکہ طور پر اپنا امیدوار نامزد کیا ہے. انہوں نے مطلع کیا کہ جناب ریڈی اس مہینے کی 21 تاریخ کو اپنا پرچہ نامزدگی داخل کریں گے.
is one of the India's most distinguished and progressive jurists. He has had a long and eminent legal career, including as judge of the Andhra Pradesh High Court, Chief Justice of Guwahati High Court and judge of the Supreme Court. He has been a consistent and courageous champion of social, economic and political justice.
نائب صدر کا انتخاب آئندہ مہینے کی 9 تاریخ کو ہوگا. نائب صدر کے عہدے کے لیے پرچہ نامزدگی داخل کرنے کی آخری تاریخ 21 اگست ہے. کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 22 اگست کو ہوگی جبکہ اس مہینے کے 25 تاریخ تک نام واپس لیے جا سکتے ہیں. جناب جگدیپ دھنکڑ کے استعفے کے سبب یہ انتخاب ہو رہا ہے جنہوں نے صحت سے متعلق وجوہات کا حوالہ دیتے ہوئے گزشتہ مہینے استعفیٰ دے دیا تھا. راجیہ سبھا کی جانب سے کانوں اور معدنیات ترمیمی بل 2025 کو آج منظور کیے جانے کے ساتھ ہی इस बिल को पार्लियामेंट की मंजूरी मिल गई है। लोकसभा इस बिल को पहले ही मंजूर कर चुकी है। ये बिल कानों और मादनियात से मुतालिक 1957 के कानून MMDR में तरमीम करेगा। इससे पहले बिल पेश करते हुए कोयला और कानकनी के वजीर जी किशन रेड्डी ने कहा कि MMDR कानून में की गई तरमीमात भारत को मादनियात के शोबे में खुद कफील बनाने की जानिब अहम कदम है।
आज इस MMDR एक्ट में 6 अमेंडमेंट्स ला रही है, जो माइनिंग ब्लॉक्स में मिनरल प्रोडक्शन करते हैं उस समय मेन मिनरल से अलावा कोई दूसरी एसोसिएटेड मिनरल भी अगर है तो उसमें आइडेंटिफाई करके एसोसिएटेड मिनरल को भी माइनिंग करने का लीज होल्डर
के बाद में
आज का अमेंडमेंट मिलती रही है। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट को भारत में प्राइवेट सेक्टर को और पब्लिक सेक्टर को फाइनेंस देने के लिए निर्णय किया है। कैप्टिव माइंस जो अमेंडमेंट लाए गए इसमें जो 30-40 साल से लेगेसी स्टॉक्स डम्स एंड ओवरबर्डन पड़ा हुआ है आज उस ओवरबर्डन को बेचने के लिए उस कंपनीज को अनुमति दे रहे। कैप्टिव माइंस को जो रॉ मटेरियल जरूरत है उस यूज करने के बाद जितना भी प्रोडक्शन करेगा वो प्रोडक्शन ओपन मार्केट में कमर्शियल में बेच सकते हैं।
ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई में आज बार बार रखना पड़ा। बिहार में वोटर फहरिस्तों पर नजरसानी की खसूसी मुहिम SIR के मामले पर ऐवान की कार्रवाई कई मरतबा मुलतवी हुई। लोकसभा ने शोरगुल और हंगामा आरई के दरमियान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट तरमीमी बिल 2025 को मंजूर कर लिया। ऐवान जीरी ने बैन अवी खलाई स्टेशन का सफर करने वाले भारत के पहले खलाबाज ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला पर खसूसी बहस दोबारा शुरू की, जिसका मकसद साल 2047 तक विकसित भारत के खलाई प्रोग्राम के अहम रोल पर तवज्जो मरकूज करना था। बहस में हिस्सा लेते हुए बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट निशिकांत दुबे ने अपोजिशन पर ऐवान की कार्रवाई में रखना डालने और इस अहम मौजू पर बहस न होने देने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि शुभांशु शुक्ला ने बैन अल-अक़वामी खलाई स्टेशन पहुंचने वाले पहले भारतीय खलाबाज बनकर मुल्क का सर फख्र से ऊंचा किया है। इससे पहले सुबह 11 बजे जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो स्पीकर ओम बिरला ने ऐवान को बताया कि ऐवान की कार्रवाई का तर्जुमा अब कश्मीरी, कोंकणी और संथाली जुबानों में भी दस्तियाब होगा। जनाब बिरला ने कहा कि अब तक ऐवान की कार्रवाई का तर्जुमा अंग्रेजी और हिंदी समेत 18 जुबानों में फराहम किया जा रहा था। जनाब बिरला ने इत्तला दी कि कश्मीरी, कोंकणी और संथाली जुबानों के इजाफे के बाद अब ऐवान की कार्रवाई का तर्जुमा आइन के 8वें शेड्यूल में मौजूद सभी 22 जुबानों में फराहम किया जा रहा है। राज्यसभा में भी इसी तरह की सूरत हाल रही। राज्यसभा की कार्रवाई जब सुबह 11 बजे शुरू हुई तो डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से मुख्तलिफ मामलात पर मौसूल इल्तवा के 20 नोटिसेज को मुस्तरद कर दिया। भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल को UAE में होने वाले आइंदा माह के एशिया कप के लिए भारतीय T20 टीम का नायब कप्तान मुकर्रर किया गया है। सूर्य कुमार यादव बदस्तूर भारतीय T20 टीम के कप्तान रहेंगे। गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव को भी टीम में शामिल किया गया है। BCCI के चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान करते हुए कहा कि 9 सितंबर से 28 सितंबर तक अबू धाबी और दुबई में एशिया कप T20 टूर्नामेंट खेला जाएगा, जिसमें 8 टीमें शामिल होंगी। दिफाई चैंपियन भारत पाकिस्तान, ओमान और UAE के साथ ग्रुप ए में है। हरमनप्रीत कौर पहली मरतबा खवातीन के ICC क्रिकेट आलमी कप में भारत की कप्तानी करेंगी। वहीं स्मृति मंधाना नायब कप्तान होंगी। BCCI ने 30 सितंबर से भारत में खेले जाने वाले क्रिकेट आलमी कप के लिए पीर के रोज 15 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। हुकूमत ने राजस्थान के कोटा बूंदी में 1,500 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत के ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे की तामीर को मंजूरी दे दी है। हुकूमत ने ओडिशा में 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत के 6 लेन वाले राजधानी खिता रिंग रोड प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में चीन के वजीर खारजा वैंग यी के साथ मीटिंग के दौरान भारत चीन सरहद पर अमन सुकून बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया। पार्लियामेंट ने कानों और मादनियात से मुतालिक तरक्याती और इंजिबाती तरमीमी बिल को मंजूरी दे दी है और क्रिकेट में मर्दों के आइंदा T20 एशिया कप और खवातीन के ODI आलमी कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।